Om Shanti and good morning. It's my great pleasure and honor to welcome our senior brother Ramesh Bhai to be with us this morning. Ramesh Bhai has been with Baba for over 50 years and is based in Mumbai. Many of you here may be meeting Ramesh Bhai for the first time. And so I thought to tell you a little bit about his background. He did say to me this morning that just say he is a soul in the body called Ramesh. However, there's a lot more. And so I've got one or two points about his background to share with you. And as you can see that he has taken on a lot of service responsibilities. So to give you an idea, Ramesh Bhai is the additional Secretary General of Brahma Kumaris Vishwavidyalaya, and he looks after the financial properties and legal administration. He's also the Managing Trustee of the World Renewal Spiritual Trust, Founder Secretary of the Brahma Kumaris Educational Society. He's the Chairperson of the Jurist Wing, and a member of the Governing Board and Secretary of the Raj Yoga Education and Research Foundation. He's also Chairperson of SPARC, the Spiritual Application and Research Center. And just lastly, he also produced a book called Pure Money Economics, which is about the understanding of economics and the philosophy of life. So in addition to all that, he's very much our senior brother and has been a great friend for double foreigners around the world, helping them and guiding them in how really to put Baba's directions into practical life. So a big, big thanks and welcome to Ramesh Bhai, and I'd just like to offer you this on behalf of the double foreigners.
Om Shanti. कल अव्यक्त बाप दादा के इस सीजन की पहली पधरामणी थी और हमारे आप सब डबल फॉरेनर्स जो है वो बहुत लक्की हैं. क्रिकेट की भाषा में कहें, आज की दुनिया में आप जानते हैं क्रिकेट बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स है. उसके अंदर जो ओपनिंग में आता है उसको कहते हैं ओपनिंग बैट्समैन. तो हमारे डबल फॉरेनर्स और कल का क्लास जो था वो जैसे कि सीजन का ओपनिंग क्लास था, पहला क्लास था. आपका क्लास के अंदर बाबा होमवर्क क्या कराया है वो नहीं पूछते हैं, परंतु मैं समझता हूँ 15 नवंबर का जो पहला जो क्लास होगा उसके अंदर बाबा ने जो पिछले सीजन में होमवर्क दिया हुआ था वो होमवर्क के बारे में अवश्य ही पूछेंगे, क्योंकि बाबा परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है और परम सद्गुरु भी है. तो शिक्षक के रूप में हम बच्चों को गाइड करते हैं और जो सिखाया उसको कहाँ तक जीवन में धारण किया हुआ है उसके बारे में पूछते हैं. तो उसी के कारण परम शिक्षक के रूप में बाबा जो पूछते हैं इसका कार्य करना पड़ता है. आप सबको भी मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी सुनते हैं इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन के अंदर 15 नवंबर की मुरली के अंदर बाबा होमवर्क के बारे में जो प्रश्न पूछे उसके बारे में जवाब देने के लिए तैयार होने चाहिए. बाबा परम शिक्षक है, परंतु दुनिया के शिक्षक के माफिक नहीं होता है. हम स्कूल में पढ़ते थे तब जब होमवर्क नहीं करते थे तो टीचर जो है पनिशमेंट देता था. आप में से भी कई ऐसे होंगे जो टीचर के रूप में जिन्होंने काम किया होगा, मैं जानता हूं बिकॉज आई हैव वर्क फॉर 8 years इन डिफरेंट कॉलेजेस इन इंडिया. तो इसके कारण जानता हूं कि जो स्टूडेंट नहीं काम करते थे उसको हम पनिशमेंट भी देते थे. तो इस प्रकार से हिंदुस्तान में पनिशमेंट इज अलाउड है, इन फॉरेन कंट्रीज पनिशमेंट इज नॉट अलाउड, इन इंडिया स्टिल इट इज गोइंग ऑन. तो इस प्रकार से 15 नवंबर के मुरली के समय में मैं एडवांस में आपको इंटीमेशन दे देता हूं कि आप करिए. बाकी कल की बात जो है उसका जो मुरली का जो टाइटल आया हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है, हमारे भाई साहब ने बताया हुआ है कि वर्तमान वायुमंडल प्रमाण मनसा शक्ति द्वारा पावरफुल प्रकाश देने की सेवा करो, वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करो। मैं दो दिन पहले ऊपर गया था ज्ञान सरोवर अपने सॉरी यहाँ ग्लोबल ऑडिटोरियम में, वहां पर एक बहन ने क्विज पूछा हुआ था और क्विज के अंदर एक सवाल था कि इस सीजन के अंदर जब यहाँ आए हुए डबल फॉरेनर्स तो पहले किसने सकाश शब्द सकाश के बारे में बात कही थी। वो क्विज उस बहन ने पूछा था जो उस टाइम पर वहां पर बोर्ड मीटिंग के मेंबर्स जो बैठे हुए थे उनको मालूम होगा किसने सकार शब्द के बारे में पहली बार इस सीजन में कहा। और उस बहन ने ही जवाब दिया कि दादी जानकी ने सकार शब्द का पहला उपयोग डबल फॉरेनर्स की सीजन में शुरू किया था। और इसलिए उसने कहा कि जिन्होंने सकार शब्द दादी जानकी ने कहा हुआ उसको 9 मार्क 100 मीन्स 9 out of 9 नौ में से 9 मार्क दिया हुआ था। तब मुझे भी ख्याल आया कि दादी जानकी ने पहली बार, क्योंकि डबल फॉरेनर्स के साथ क्या बात होती है हमें इतने मालूम नहीं पड़ती है, तो इसलिए हमको मालूम पड़ा कि दादी जानकी ने पहली बार सकाश शब्द यूज किया है। बाकी कल बाबा ने जो सकाश दिया हुआ है पावरफुल सकाश के द्वारा, पावरफुल वाइब्रेशन के द्वारा बहुत सी बातें कही हुई है। कल बाबा ने 4-5 नई बातें कही हुई है जिसके ऊपर अटेंशन देना चाहिए। पहले तो बाबा ने हर समय का नियम तोड़ दिया और बाबा ने एक नियम जो बताया था ज्ञान के अंदर कि प्रेम में नियम नहीं होता है, प्रेम में नियम नहीं होता है। नियम शब्द की एक डेफिनेशन पर बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कही हुई है नियम, नी और यम, तो नियम पर चलते हैं उसके बाद यम अर्थात दुख अशांति और यमराज की जो भी बातें जो होती है वो नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो नियम की बात होती है बाबा हर नामा यही कहते हैं, स्टार्ट करते मैं मुरली लिखता हूं तो पहले मैं यही लिख देता हूं कि बाबा यही कहेंगे आज प्यारो और के, इस प्रकार के बाबा की मुरली उनसे स्टार्ट होती थी। ट्रेडिशनली वही बात हर समय बाबा रिपीट करते थे। कल बाबा ने अपनी ही ट्रेडिशन को तोड़ दिया और सीधा ही कह दिया कि हर एक बच्चे का प्यार बाबा को मिल रहा है, बाबा का जो हमारा जो बाबा के लिए लव जो है, रिस्पेक्ट जो है, जो भी आप कहो वो बाबा को मिल रहा है। और उसका रिटर्न में बाबा भी हर बच्चे को पदम गुना प्यार दे रहा है। और बाबा ने ये भी बताया कि हर एक बच्चा जो है स्नेह में समाया हुआ है। और बाबा भी कहते हैं और बच्चे भी कहते हैं, बच्चे कहते हैं वाह बच्चे वाह, और बाबा भी कहते हैं वाह बच्चे वाह। इस प्रकार से जो है उसके अंदर बाबा ने आगे बताया कि आज डबल विदेशियों का मिलने का दिन है। और इसलिए देखो बाबा ने स्टार्ट कैसे किया, बाबा ने पहले कहा कि बाप दादा विदेशियों की सेवा में संतुष्ट है, और फिर बैलेंस रखने के लिए कि भारत की सेवा भी कम नहीं है, लेकिन आज के दिन प्रमाण बाप दादा ने देखा कि विदेशियों की सेवा का विस्तार अच्छी विस्तार को पा रही है। ये जो कल बाबा ने जो कहा 6 बार बाबा ने कहा वह भारत और विदेश, भारत और विदेश की बात कही, और दोनों हर समय पर बाबा ने बैलेंस रखा। ये बाबा का जो बैलेंस रखने का कारोबार जो है ना बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए जिसको कहते हैं सोशल साइंस समाज शास्त्र जो है, समाज शास्त्र के अंदर कई नियम होते हैं, उस नियम के अंदर यही है जहाँ घर घर के अंदर जो झगड़ा होता है, समस्याएं होती है, उसका कारण यही होता है कि बैलेंस नहीं रखती है। एक हमारे हिंदुस्तान के अंदर होता है सास होती है, मदर इन लॉ होती है, मदर इन लॉ जो है डॉटर और डॉटर इन लॉ के बीच में बैलेंस नहीं रखती है, डॉटर और डॉटर इन लॉ के बीच में बैलेंस नहीं रखती है। और क्या करती है सास जो है डॉटर का, डॉटर के लिए ज्यादा मेहनत करती है, उसके प्रति उसको ज्यादा प्यार देती है, इस प्रकार से करती है। और डॉटर इन लॉ जो है उसको इतना प्यार नहीं देती है, इसके कारण क्या होता है झगड़ा होता है, और झगड़े अंदर होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रॉब्लम नहीं, अनेक प्रॉब्लम होता है। जहां जहां भाई भाई के झगड़े में भी यही होता है कि जब दोनों के बीच में बैलेंस नहीं रखते, एक को ज्यादा एक को कम इस प्रकार से करते हैं, तो जहाँ बैलेंस नहीं होता है वहाँ पर समस्या होती है, वहाँ पर ईर्ष्या होती है, वहाँ पर द्वेष होता है, और वहाँ से ही जो भी आपस के झगड़े जो होते हैं, वॉर्स जो होते हैं, डिफरेंशिएशन जो होता है वो उसके कारण होता है। तो इसलिए बैलेंस रखने की बात जो बाबा ने कही हुई है, अगर ये सब ये बात सब जगह पर हमारे सेंटरों पर भी ये बात होनी चाहिए। सेंटरों पर जो है हमारे पास आते हैं बहन भाइयों के पत्र आते हैं, जो बहन अगर पुराने भाइयों को ध्यान राजा रखती है तो नए भाई नहीं चलते, और नए भाइयों का ध्यान रखती है तो पुरानी बहनों पुराने भाई बहन जो है ना वो यह फरियाद करते हैं, लिखते हैं कि अभी तो बहनें जो है ना नए भाई बहन जो है उसका ही ध्यान रखती है, हमारा ध्यान ही नहीं रखती है। इस प्रकार से सेंटरों के अंदर भी इस प्रकार से बैलेंस नहीं रखते हैं, क्लासेस के अंदर आने वाले स्टूडेंट्स के बीच में, तो वहां पर भी समस्या होती है। सब जगह पर समस्या समस्या समस्या, और उसका एक फंडामेंटल कारण जो भी है वो यही कारण है कि समस्या का कारण कि बीच में बैलेंस नहीं रखते दोनों को समान, जिसका हमारे ये हिंदी में कहते भी है दोनों नजरों से समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो इस प्रकार से समान दृष्टिकोण से देखते हैं तो क्या होता है, समान रहते हैं और उसके कारण कोई किसी से दुखी नहीं होता कि वो आगे है मैं पीछे हूँ आगे हूँ, इस प्रकार की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का प्रॉब्लम नहीं होता है। रोने का कॉम्प्लेक्स जो भी है, इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्स को सोशल कॉम्प्लेक्स जो भी कहो, वो एक समान रहता है। ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से आप अगर हम जानते हैं हमको फैमिली में रहने का है, फैमिली में रह करके फैमिली के अंदर सुख शांति होनी चाहिए। ज्ञान बाबा का ज्ञान भी यही है कि घर गृहस्थों को स्वर्ग बनाना है, तो हर घर को स्वर्ग बनाना है और घर के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं हो तो उसका एकमात्र कारण यही है, और इसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि घर के अंदर सबके साथ समान रखो, समानता का भाव रखो। कई जगह पर हमने दिखा है जो हिंदुस्तान के फैमिलीज के अंदर बच्चे होते हैं, बच्चा और बच्ची, इन दोनों के बीच में भी समानता नहीं होती है, बच्ची और बच्चे में समानता नहीं होती है। इसमें इस्लाम में तो बहुत प्रॉब्लम है, इस्लाम धर्म जो है इस्लाम के अंदर कोई भी व्यक्ति मुसलमान धर्म को मानती होगी उसको अपना वील बनाने का अधिकार नहीं है इस्लाम धर्म के अंदर, और उसके अंदर यही है कि बच्चा जो होता है उसको ट्वाइस दी अमाउंट, लड़की जो होती है उनसे ट्वाइस दी अमाउंट लड़के को देना पड़ेगा। मतलब समझो एक बहन एक बाप जो है उसको 3 लाख रुपया छोड़ दिया है और एक बेटा एक बेटी है, तो बेटे को 2 लाख मिलेगा, बेटी को 1 लाख मिलेगा। मतलब इस प्रकार से ये फंडामेंटल डिस्क्रिमिनेशन जो है मोहम्मद पैगंबर ने जब बनाया कानून अपनी धर्म के लोगों के लिए, तब से ये डिस्क्रिमिनेशन चालू रखा। हिंदुस्तान में भी ऐसा ही था, हिंदू लॉ में भी ऐसा ही था, डिस्क्रिमिनेशन चालू था टिल 1917। लड़की को कुछ नहीं देते थे, सब लड़के को ही देते थे, तो ये लड़का लड़की के बीच का जो भेद था जिसमें समानता नहीं होती थी इसके कारण ऐसा ही हुआ है। और आज भी समाज कानून हिंदुस्तान में आगे बढ़ गया है और कानून के अंदर हिंदुस्तान में कानून में कहा गया है लड़का और लड़की को दोनों को समान हिस्सा, जो भी बाप मर जाता है माँ बाप मर जाते हैं तो उसके बाद मिलना चाहिए। ये कानून है, कानून बना दिया है सिंस 1947, परंतु उसमें एक बात रखी हुई है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी हिंदू होता है उसको विल बनाने का अधिकार है। इस्लाम धर्म में वो मुसलमान धर्म में वो नहीं है, विल बनाने का अधिकार नहीं है उसमें, कंपलसरी इन द रेशियो 2:1 इस प्रकार से ही एसेस डिवाइड करना होता है। हिंदू धर्म में 47 के बाद ये नक्की किया है कि जो भी धन होता है वो धन को फादर जो भी है वो कैसे भी चाहे ऐसा कर सकता है। और मैं आपको अनुभव से कहता हूँ क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने मोर देन 3000 हमारे क्लाइंट्स के जो है यहाँ तो मेंबर्स ऑफ डिवाइन फैमिली आदि का विल बनाया हुआ है most of 99% of them are Hindus. And aapko, you will be surprised that none of the parents, mother ho ya father ho, none of the parents maintain balance between the son and daughter. बाप और मतलब बाप माँ बाप जो भी है बेटा और बेटी के बीच में समानता नहीं रखते हैं, ये हकीकत है। 3000 लोगों का बिल बनाया हुआ है, उसमें सब यही लिखवाते हैं हमारे से कि हमने हमारी बेटी के शादी में उनको जो देना था वो दे दिया, बाकी हमारी जो एसेट है वो हमारे बेटों के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। सो समटाइम्स व्हाट हैज हैपेंड, द लॉ हैज गॉन अहेड ऑफ अस, सोशल स्ट्रक्चर्स के आगे चला गया है। बस मानवी के मनुष्य की जो भी भावनाएं जो है, भावनाओं में जब तक परिवर्तन नहीं हुआ है, भावनाओं के बीच में बाप और माँ बाप मतलब बेटी और बेटे के बीच में समानता नहीं रखेंगे, सासू जो है पुत्र वधु और बेटी के बीच में समानता नहीं रखेंगे, तब तक ये सामाजिक समस्या रहेंगी रहेंगी और रहेंगी। तो इस प्रकार से ये सामाजिक समस्या दूर करने का बाबा ने कल एग्जाम्पल बहुत सुंदर बनाया कि नहीं तो क्या होता था, देश और विदेश की सेवा के बीच में कंपटीशन हो सकती थी, परंतु इसके बदले में कल इस प्रकार से बाबा ने हैंडल किया कल का सिचुएशन, इतना सुंदर हैंडल किया कि दोनों को एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन के बदले में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया। ये बाबा की महानता है, बाबा की श्रेष्ठ कल भूमिका थी कि हाउ टू मेंटेन बैलेंस, बैलेंस बिटवीन डबल फॉरेन सर्विस एंड गॉडली सर्विस इन इंडिया ऑल्सो। इस प्रकार से दोनों के बीच में बैलेंस रखने से क्या होता है कि बहुत ही अच्छी रीत से प्रेम प्यार से हम दोनों सब मिलकर के यही कार्य करेंगे, हम ईश्वरीय सेवा का, बाबा को नाम, बाबा का दुनिया के अंदर नाम प्रत्यक्ष करने का। तो ये बहुत बड़ी बात है, कल ये सीखने की है कि सब जगह पर हम समानता रखें। जो भी हमारे भारत के बहन भाई ये मुरली सुनते हैं और मेरा ये विचार सुनते हैं, तो इसके लिए उन सबको हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में भी अपने माँ बाप जो भी यहाँ बैठे हुए सुनते रहते हैं वो भी अपने बेटा और बेटी के बीच में समानता रखें, तो अवश्य ही कल बाबा के अनुभव के आधार पर, मुरली के आधार पर मैं कहता हूँ कि हर एक के घर में सुख शांति अवश्य ही हो सकती है। ट्राई टू मेंटेन बैलेंस, बैलेंस इन ऑल रिलेशनशिप्स, दैट इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग। फिर कल बाबा ने बहुत अच्छी बात दूसरी भी बताई हुई है। बाबा ने कहा है कि मतलब एक एक बच्चा वहां करके बाबा ने अप्रिशिएट किया, डबल विदेशियों के लिए खास कहा, और इसके लिए बाबा ने कहा कि सब जगह पर अच्छी सेवा हो रही है। बाबा ने जो देखो पहले भी कहा वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह, और बच्चे भी कहते वाह बाबा वाह। ये दूसरी एक बात बाबा से सीखने की है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन। आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन का हमको अनुभव साकार बाबा ने कराया था लॉन्ग बैक। लॉन्ग बैक मना बाबा के साथ मैं दिल्ली गया हुआ था, दिल्ली में वहां पर मेजर वर्मा जो है उसके घर में रहे हुए थे, बाबा भी उसमें ही रहे थे, और वहां हमको मालूम पड़ा कि मातेश्वरी जो है वो बेंगलोर गए हुए थे, और एक भाई जो है बेंगलोर बाबा की मुरली सुनने के बाद सीधा ही दिल्ली जाने वाला था। तो मैंने जल्दी जल्दी में एक पेज का समाचार लिख दिया कि हम कैसे ट्रेन में आए, कैसे यहाँ आए, अपने मेजर साहब के घर में रहे हुए हैं, इस समाचार लिख करके और ऑलराउंडर दादी से टोली ले करके मैं बाबा की मुरली में पहुंच गया। और जैसे मुरली पूरी हुई मैंने उस भाई को बुलाया और बाबा मैंने कहा बाबा मैंने मातेश्वरी जी को पत्र लिखा हुआ है और ये पत्र देने का है, आप दे दो मातेश्वरी जी के लिए। लेट अस डू दिस मेडिटेशन। मैं आपको ये हमारा अनुभव सुना रहा था कि ब्रह्मा बाबा को मैंने कहा बाबा ये मैंने पत्र लिखा है और ये ऑलराउंडर दादी से टोली लिया है और बेंगलोर में अपनी माधेश्वरी जी है, उसके लिए इनको भेजना है। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे ये पत्र कब लिखा? मैंने कहा, यहाँ आए स्नान पानी करके क्लास में आ रहा था, जितने में मुझे मालूम पड़ा। तो बाबा ने सारे क्लास के बीच में कहा, देखो बच्चे ने बाप के ऊपर जीत पा ली, बच्चा आगे बढ़ गया। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा एक पत्र लिखने में मैं जीत पाई, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत छोटी बात है, आप इतनी छोटी बात को इतनी बड़ी अप्रिशिएट क्यों करते हो? तो बाबा ने कहा कि बच्चों को सिखाने के लिए, बड़े जो है बड़ों का एक फर्ज है कि छोटों को अप्रिशिएट करना चाहिए। ऑल एल्डर्स ऑल सीनियर्स मस्ट लर्न दिस आर्ट ऑफ ब्रह्मा बाबा। बाबा सेड दैट ऑल सीनियर्स दे मस्ट लर्न दिस आर्ट ऑफ अप्रिशिएटिंग देयर जूनियर्स सो दैट दे कैन एनकरेज दिस जूनियर्स सो दैट दे कैन जूनियर्स कैन पिकअप ऑल्सो बिकॉज वन डे दिस जूनियर्स विल बिकम सीनियर्स इन द लॉ बिकॉज ऑफ द लॉ यू सी आई मीन वी आर ऑल एजिंग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ऑल सीनियर्स विल बी रिप्लेस बाई दोज हु आर सो कॉल्ड जूनियर्स एट एज ऑन टूडे। तो इसलिए आज के जूनियर्स जो है उसको कल को सीनियर बनाना है, तो इसलिए हर सीनियर्स की, चाहे घर में है, चाहे बिजनेस में है, चाहे सर्विस में है, कहाँ भी है, सब जगह पर जो भी जूनियर है उसको इतना अप्रिशिएट कर करके उसको आगे बढ़ा करके लायक बनावे, ताकि एक दिन ऐसा आएगा कि वो जूनियर्स जो है सीनियर की पोजीशन पर बैठ सके। तो ये कल बाबा का, ये बाबा ने कई बार कल हम बच्चों को अप्रिशिएट किया, विदेश की सेवा को अप्रिशिएट किया, भारत की सेवा को भी अप्रिशिएट किया। फिर बाबा ने कल समय को फिर से याद किया। बाबा ने कहा, समय अपना नजारा दिखा रहे हैं, फिर भी बच्चों को बाबा ने कहा अपनी सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे देश को विदेश में। तो इसलिए बाबा ने ये समय को याद किया है, और समय को देखते हुए हमें अपनी जो भी सेवा जो है, सेवा की रफ्तार, सेवा की स्पीड जो है, चाहे देश हो चाहे विदेश में, बढ़ तो रही है पर और भी इसको बढ़ाने की जरूरत है। और इसलिए बाबा ने फिर अप्रिशिएट किया कि हर श्रेष्ठ कार्य की रिजल्ट देख दिल से कहते हैं, वाह बच्चे वाह। और बाबा ने क्या कहा, दूसरी बार कही, मन की बाप दादा दोनों की सेवा से सुख खुश है। परंतु फिर बाबा ने एक पहला सजेशन दिया है सर्विस का, कल चार पांच सजेशन नए नए दिए हुए, उसमें पहला सजेशन है कि मन की स्थिति नंबर वार है। अब बाप दादा चाहते हैं कि स्वस्थिति और सेवा की स्थिति दोनों में तीव्र हो, दोनों तीव्रता में आ जावे। स्वस्थिति हमारे अपना कई बार क्या होता है, वी सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ गॉडली सर्विस, वी निग्लेक्ट सेल्फ सर्विस ऑल्सो। तो बाबा से कि सेल्फ सर्विस और सेवा की दोनों के अंदर जो है उसकी हमारी स्पीड जो है उसको और भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि समय की स्पीड बढ़ती रहती है और हमारी स्पीड अगर कमती हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समय हमसे आगे बढ़ जाएगा। और उसमें भी संगम युग का जो समय जो है और बहुत 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 मूल्यवान है। तो इसलिए बाबा सेज दैट यू सी यू हैव टू टेक केयर एंड मेंटेन द एंड इंक्रीज द स्पीड ऑल्सो। और फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, बहुत बाबा ने एक सुंदर सजेशन डायरेक्शन के रूप में दिया हुआ है कि हर बच्चा अचल अडोल होकर के आगे बढ़े रहना चाहिए। हम आगे बढ़े और पीछे में हमारे खुद की अवस्था अच्छी नहीं होंगी, स्थिर नहीं होंगी, तो क्या होगा, हम दुनिया के सामने कैसे अपनी सेवा का प्रभाव डाल सकेंगे। इसलिए सेवा के अंदर ये बाबा ने एसेंशियल क्वालिटी बताई कि सेवा करने के अंदर अचल और अडोल रहकर के ही आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर बाबा ने कहा, जो दूसरा सजेशन दिया हुआ है कि बच्चों को मेजोरिटी पावरफुल सकाश से वायुमंडल में परिवर्तन करने की मनसा शक्ति की अति आवश्यकता है। ये जो सकाश शब्द जो है, कल बाबा ने मुरली में पहली बार जो कहा, जो हमारे मुरली का टाइटल में भी आया कि पावरफुल सकाश के द्वारा सेवा करो, तो ये सेवा का जो चार्जिंग जो है जो दुनिया का जो एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर हमारे पावर के जो भी है पावरफुल स्टेज के द्वारा उसको चार्ज करने का है और वायुमंडल को परिवर्तन करना चाहिए। दुनिया का जो एनवायरमेंट जो है एटमॉस्फेयर जो है जो भी जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं चाहे देश के अंदर कोई देश में भी या कोई विदेश में जहां भी रहते होंगे वहां का वायुमंडल करने के लिए परिवर्तन करने के लिए मनसा शक्ति पिछले दो सीजन से बाबा मनसा शक्ति के ऊपर एम्फोसिस दे रहे हैं। कारण यही है कि जितनी बाकी की जो सेवा है जो जैसे यहां भी आप आए हो आने जाना सेवा पर फंक्शंस करना कॉन्फ्रेंस करना एग्जीबिशंस करना आदि जो भी है वो दे आर ऑल पीस समय जो होती है शांति के समय की सेवाएं हैं और अशांति के समय की सेवाएं अब तक हम लोगों ने सीखी नहीं है ना इतना एक्सपर्ट उसके अंदर बने हुए हैं तो इसलिए अशांति के समय की सेवा के लिए बेस्ट टूल जो है मेंटल पावर के द्वारा मनसा शक्ति के द्वारा ये ईश्वरीय सेवा बढ़ाने का कारोबार करना चाहिए। मनसा शक्ति को डेवलप करने के लिए हम शरीर की शक्ति को डेवलप करना करते हैं मेहनत विद्या की शक्ति को मेहनत करते हैं हम पैसे की शक्ति का बढ़ाने का कोशिश करते हैं हम जो भी होंगे हमारी इनकम लाख रुपया होगा तो 2 लाख कैसे हो 10 लाख कैसे हो परंतु मनसा शक्ति जो है मनसा शक्ति के द्वारा गीता में भी कहा हुआ है मनोव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधन मन जो है वही चीज ऐसी है जो हमारा हमारे को बंधन में फंसाती है या हमको मोक्ष दिला सकती है। तो मनसा शक्ति का जो है उसमें भी आप जानते हैं हमारे ईश्वरीय सेवा में 3 शब्द है तन मन और धन तो धन मन और धन में मन जो है बीच में जो है वो मन जो है उसके द्वारा तन और धन के बीच का बैलेंस रख करके अगर हम कार्य करें और इसलिए ही बाबा के मुरलियों में कई बार आता है मन मना भव अर्थात मन जो है मेरे साथ लगाओ तो ये मनसा शक्ति के अंदर मन को पावरफुल बना करके उसके द्वारा वाइब्रेशन आदि का कारोबार बाबा सिखाते हैं। बहुत बड़ी बात है और भी बाबा ने कहा कि आज की दुनिया के अंदर बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई हुई है कि आज की दुनिया के अंदर सुनने और सुनाने की शक्ति का इतना प्रयोग करने की जरूरत नहीं है परंतु उसके बदले में वृत्ति द्वारा हमारी खुद की वृत्ति जो होती है उसके द्वारा वृत्तियां बदलने की आवश्यकता है। और इसलिए क्या करिए बाबा ने देखा कि वृत्तियां बदलने की शक्ति को और ज्यादा कार्य में लगाना चाहिए सामने वालों की वृत्ति बदलने की जरूरत विचारधारा के बदले में उनके जो अंदर के जो सूक्ष्म वाइब्रेशंस जो भी है वो भी बदलने की बात है। बाबा ने आगे कहा हुआ है वृत्ति दृष्टि और कृति तीनों के अंदर परिवर्तन की बात है उसमें पहली बार बाबा ने कहा यहाँ वृत्ति बदलने की बात है। फिर बाबा ने एक बात कह दी बाबा बहुत कम बार अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं बहुत कम बार करते हैं साधारण मैं समझता हूँ 1 सीजन के अंदर 1-2 बार कहते हैं बाबा ने चक्कर लगाया चक्कर लगाने के बाद बाबा कहते भी चक्कर लगाने में बाबा तो 1 सेकंड लगता है। तो इस प्रकार से बाबा ने कल भी अपनी शक्ति का अपने पोजिशन का अपना व्यवहार का अपना कार्य का परिचय दिया और बाबा ने कहा कि बाबा विदेशों में चक्कर लगाते हैं विदेशों में चक्कर लगाते हैं ये हकीकत है। हम भी विदेश सेवा में कई बार गए हुए हैं ना तो हम अनुभव करते हैं कि वहां पर बाबा का साथ जितना भारत के अंदर सेवा में काम में आता है उनसे ज्यादा विदेश के अंदर हमको काम में आता था कि बाबा का साथ काम में आता था मददगार बनता था तो बाबा चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने चक्कर लगा करके ये शब्द कह करके बाबा ने अपनी अथॉरिटी बताई। क्या होता है मेरा अनुभव है कि आस्ते आस्ते हमारे दैवी परिवार के बहन भाइयों के अंदर भी माफ करना मेरे ये शब्द के बाबा के लिए बाबा का जो चौथा स्वरूप है आप जानते हैं परमात्मा बाप भी है टीचर भी है एंड गुरु भी है 4th dimension ऑफ गॉड वो जो है वो आप सबको मालूम है हम सबको मालूम है सभी धर्मों में लिखा हुआ है और धर्मराज भी है. दिस फोर्थ डायमेंशन ऑफ बाबा पर्सनालिटी दैट इज बीइंग निग्लेक्टेड. और क्या होता है, हम हमारे अति परिचय आज अवज्ञा भवती ऐसा कहते हैं संस्कृत में भी. तो इस प्रकार से बाबा के साथ का ज्ञान में आने से क्या होता है, शुरू शुरू में जो भगवान का परमात्मा का भक्ति में भी जो डर था धर्मराज के रूप में, वो यहाँ ज्ञान में चलते चलते क्या होता था हो जाता है कि हम लोग वो डर को भूल जाते हैं. और इसलिए क्या होता है कि परमात्मा का डर चले जाने से कारण अनेक प्रकार के विकर्म अनजान में भी कई बार करते हैं और कई बार जानबूझ करके भी करते हैं. इट्स ए वेरी सैड स्टोरी. और हकीकत यही है कि वी हैव निग्लेक्टेड द फोर्थ डायमेंशन ऑफ बाबा दैट ही इज द सुप्रीम जस्टिस ऑल्सो एंड अल्टीमेटली वी ऑल विल हैव टू फेस हिम एज ए सुप्रीम जस्टिस ऑल्सो. सो प्लीज टेक केयर that we need not face Baba as a supreme justice, but we may sit with him on the tribunal as a judge. That is a different story, but not that we should be presented before Shri Baba as criminals also, as those persons who will be getting punishment from Baba. So try to avoid this punishment, and therefore see that and remember Baba as supreme justice also. तो इसलिए बाबा चक्कर भी लगाते हैं और कहते हैं, फिर से याद कराया कि वातावरण मुझे मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की आवश्यकता है. द नीड ऑफ द आवर जो है वायुमंडल को परिवर्तन करना है. ट्रांसफॉर्म दिस एटमोस्फियर, ट्रांसफॉर्म दिस एनवायरमेंट, ट्रांसफॉर्म दिस ऑल दिस वेज एंड मीन्स बिकॉज ऑफ विच वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड. उसको करने की जरूरत है. फिर बाबा ने तीसरी बार भी कहा कि मनसा शक्ति के द्वारा वाइब्रेशंस चेंज करना है और वातावरण को भी चेंज करना है. और इसके लिए वातावरण चेंज करना है सब काट कर लिए बाबा ने जो तीसरा एक साधन बताया कि मन की शुभकामना, पॉजिटिव वाइब्रेशंस ऑफ द माइंड, मेंटल पॉजिटिव वाइब्रेशंस, यहाँ तो वाइब्रेशन पॉजिटिव वाइब्रेशन ऑफ द माइंड उसको डेवलप करना पड़ेगा. ये बहुत कठिन बात है. क्या होता है, एक मक्खी होती है, मक्खी का भी अनुभव होता है कि वो फ्लावर्स के ऊपर बैठती है और उसमें से रस खींच करके हनी इकट्ठा करती है और फिर हनी उसमें डेवलप करती रहती है. तो एक मक्खी को भी अक्कल है कि अच्छी चीज एक्सट्रैक्ट करना, अच्छी चीज कलेक्ट करना और अच्छी चीज बनाना. एक मक्खी में भी वो ताकत है. बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग द्वारा हर एक के सामने पॉजिटिव थिंकिंग रखो, खुद का भी पॉजिटिव थिंकिंग हो. बाबा ने एक बहुत अभ्यक्त मुरली में कहा है कि सामने वाला और दुनिया में सभी कमजोर है, अशक्त है, समस्या से भरपूर है. वो तो सब जानते हैं, उसके अंदर उनके अंदर इस प्रकार से शक्ति के द्वारा उनको उनके अंदर उमंग उत्साह बढ़ाने का और इस प्रकार का मनसा शक्ति का कारोबार करने के लिए बाबा ने कहा है. दैट इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग एट द मोमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड. तो ये ध्यान में रखने का है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ पर कई बार हमारी बहनें भी क्लासेस कराती है, कहीं दुनिया में भी क्लास कराते हैं आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. जैसे मैंने कहा ना पहले, आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन. इस प्रकार से बाबा ने कल फिर से एम्फोसिस दिया आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. सो शुभकामना पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा अगर हम कार्य करें तो, क्योंकि जिसका बीज पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, जिसका बीज नेगेटिव होगा तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव होगा. तो इसलिए चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उसका कारण यही है, हम ही हैं. हमारे मन में हम जो भी वाइब्रेशंस पैदा करते हैं वो शुभ का भावना है, पॉजिटिव थिंकिंग है या नेगेटिव थिंकिंग है. तो इसलिए ये आर्ट डेवलप करने की जरूरत है कि हर बात में, बाबा ने इतने तक कहा कि बाबा का हर कोई भी बच्चा होगा उसमें कम से कम एक तो गुण अच्छा होगा ही, तो उस गुण को देखो. 99% अवगुण होगा तो उसको निग्लेक्ट करो, क्योंकि वो खुद भी अपने अवगुण से परेशान है, जब खुद ही अपने अवगुण से परेशान है तो क्यों आप उसके अवगुण को खुद में धारण करते हो। मम्मा मातेश्वरी जी भी हमको यही कहती थी, हमारे घर में रही थी 18 मास, हमको रोज सिखाती थी, रमेश उषा पॉजिटिव थिंकिंग करो और सबको पॉजिटिव थिंकिंग का वाइब्रेशन दो, पॉजिटिव थिंकिंग का दान करो। ये बहुत गुह्य सेवाएं हैं, पॉजिटिव थिंकिंग का दान करना, सामने वालों को पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा बल भरना, उसके अंदर उमंग उत्साह का, ये बहुत सूक्ष्म सेवा है। दिस इज अ वेरी वेरी सटल सर्विस, गॉडली सर्विस, एंड इफ यू डू इट आई एम श्योर द रिजल्ट विल बी वंडरफुल। तो इसलिए सेवा में अच्छी रीत से आगे बढ़ना है तो सेवा के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग, और इसलिए बाबा ने कहा कि शुभ भावना के आधार पर सेवा करने की जरूरत है। शुभ भावना के आधार पर क्या क्या चेंज कर सकते हैं हम, मनुष्यों की वृत्ति दृष्टि और कृति तीनों में परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी भी मेंटल साइकोलॉजी जो है वो, उसकी दृष्टि, द वे इन विच ही थिंकिंग एंड लुकिंग एट द वर्ल्ड, और थर्ड है कृति, उसका जो एक्शन जो भी है, वृत्ति दृष्टि और कृति। दृष्टि के बारे में बहुत सुंदर वेस्टर्न फिलोसोफर ने कहा हुआ है, बहुत सुंदर बात कही हुई है कि वी सी थिंग्स नॉट एज दे आर, वी सी थिंग्स नॉट एज दे आर बट एज वी आर, वी सी थिंग्स नॉट एज दे आर बट एज वी आर। और उसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कई लोगों को शास्त्रों का मालूम नहीं होगा इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। रामायण जो है वो तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे, कई कहानी है रामायण के अंदर आती है, तो राम ने बताया कि वहां के जो दृश्य देखा तो सभी फूल जो फ्लावर्स जो थे वो सफेद थे, तो तुलसीदास ने लिखा कि राम ने जो भी फ्लावर्स देखा है वो सब व्हाइट थे। तो वो उसकी कथा को हनुमान जी साथ में बैठ करके देख रहे थे कि तुलसीदास जी करेक्ट लिख रहे हैं या नहीं, तो जब उन्होंने लिखा कि सफेद फूलों को राम ने देखा तो हनुमान जी ने ऐसा ऑब्जेक्शन करके अंगुली उठाई, कहा सॉरी सर हम ऑब्जेक्शन, राम ने सफेद फूल नहीं देखा था, सफेद राम ने पीला फूल देखा था। तो दोनों के बीच में डिबेट हो गई, जो फ्लावर्स जो भी थे वो सफेद थे व्हाइट थे या येलो थे, बहुत डिबेट हुई। तो दोनों ने नक्की किया कि चलो हम राम को बुलावे, और राम को प्रत्यक्ष किया, और तुलसीदास जी ने राम को पूछा कि आपने जो फ्लावर्स देखा उस टाइम वो सफेद थे या पीला थे। राम ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि वो फूल तो सफेद थे, और तो हनुमान जी को गुस्सा बहुत था, और गुस्सा बहुत था, क्रोध का अग्नि उसके अंदर था, और वो अग्नि के कारण उसकी जो दृष्टि जो थी वो दृष्टि में परिवर्तन हो गया था, इसलिए वो सफेद फूल को भी पीला फूल के रूप में देख रहा था। इसलिए राम ने कहा तुलसीदास की भी गलती नहीं है, हनुमान की भी गलती नहीं है, हनुमान ने जो पीला देखा कारण यही है, उसको क्रोध बहुत था और इसलिए दृष्टि में परिवर्तन हो गया था, और तुलसीदास ने सही लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से शास्त्रों में भी कहानियां हैं कि दृष्टि में कितनी ताकत होती है। दूसरी भी एक वो जो है कहानी है व्याघ्र गीता करके, महाभारत में आता है, उसमें व्याघ्र गीता में भी एक सन्यासी तपश्चर्या करता है और अंजलि देने के लिए ऐसा पानी में देता है, ऊपर से वहां वह एक चकली स्पैरो थी, उस स्पैरो का जो जो डर्टी जो थिंग्स जो है उसके हाथ में गिरा, तो उसके हाथ में गिरा तो उसने ऐसा दृष्टि दिया तो स्पैरो जो है वो जल करके भस्मीभूत होकर के नीचे आ गई। तो इस प्रकार से दृष्टि की शक्ति बहुत बड़ी आध्यात्मिक दुनिया में है, और वो दृष्टि की शक्ति को बढ़ाने का और उसके लिए सामने वालों की दृष्टि में परिवर्तन करने के लिए शुभकामना की बहुत जरूरत है। फिर बाबा ने फिर और एक सजेशन दिया हुआ है सेवा को आगे बढ़ाने के लिए, आपस में संगठन बढ़ा करके, आपस में संगठन बना के सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो बाबा कह रहे हैं ऐसा, परंतु बाबा की भावना यही है कि हम आपस में संगठन कर करके एक कार्य करें। हाँ, हमारे दुनिया में भी कहानी है कि एक लकड़ी होती है अलग होती, एक ही होती है तो तोड़ना आसान हो जाता है, 50 लकड़ी का बंडल हो जाता है तो फिर तोड़ना आसान नहीं होता है। तो इस प्रकार से संगठन की शक्ति जो है, जैसे बाकी सब प्रकार की आर्ट है, इस प्रकार से आर्ट ऑफ एक्टिंग टूगेदर, और इस प्रकार से कारोबार के अंदर एक एकता के आधार पर काम करें। हम परसों दो दिन पहले निर्वेर भाई और हम बात कर रहे थे, हमने हमारे यज्ञ के अंदर हमने बताया कारोबार कैसे चलता है। दुनिया में क्या होता है, मेजोरिटी के आधार पर नक्की होता है। और सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस जजमेंट है, गोलकनाथ जजमेंट करके, बहुत सुंदर जजमेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बात गई, उसके ऊपर 12 जज बैठे हुए थे, तो 12 जज में से 6 जज ने कहा कि ये बात गलत है, 6 जज ने कहा कि ये बात सच्ची है। तो 6-6 गज का टाई हो गया, 6 जज सुप्रीम कोर्ट के जज, मीन्स दे वर एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ लॉ, और उसके अंदर 6 ने कहा कि दिस इज रॉन्ग, 6 जज जो है उसने कहा दिस इज राइट। सो इट रिजल्टेड इन ए टाई, एंड देन वन अनदर सुप्रीम कोर्ट जज, द मैटर वॉज रिफर्ड टू वन अनदर सुप्रीम कोर्ट जज, जस्टिस खन्ना, एंड ही डिसाइडेड इन फेवर ऑफ वन ग्रुप। सो वॉट हैपन्ड दैट द जजमेंट वॉज 7-6। सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू सी, आई मीन दुनिया में मेजोरिटी के द्वारा कारोबार होता है। और यज्ञ कारोबार के अंदर मैं आपको अनुभव से कह रहा हूं कि यज्ञ कारोबार में मेजोरिटी नहीं, परंतु यूनिटी के द्वारा कारोबार होता है। संगठन 100% संगठन के अंदर सबकी राय से सब कारोबार होना चाहिए, और अगर सबकी राय से सब कारोबार करते हैं तो मैं समझता हूं कि जो हमारे सेंटरों पर, हमारे घरों में, हमारे क्लासेस के अंदर, या जो सेवा के अंदर, जो भी फील्ड में हम काम करते हैं, वहां प्रॉब्लम्स जो होती है, कारण यही है, संगठन के अंदर काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, तो देर इज दैट आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो, एंड देर इज नो फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, नो ब्रेक इन अवर कम्युनिकेशन सिस्टम, एंड देर फॉर देर विल बी पीस एंड हार्मनी। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी, सी दैट यू सी वी हैव 100% यूनिटी, एंड यूनिटी की ताकत को आप समझो ईश्वरीय सेवा के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है। हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके अंदर मेजोरिटी प्रॉब्लम इसके आधार पर ही आता है कि यूनिटी नहीं होती है, मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी का हो जाता है। फिर बाबा ने दूसरा भी बताया सेवा करने का साधन, अपने को प्रैक्टिकल करना है कि स्वराज्य अधिकारी बनकर के उसका प्रैक्टिकल के अनुभव करिए। स्वराज्य अधिकारी बनना, वी मस्ट हैव कंट्रोल ऑन आवर ओन सेंसेस, हमारे जीवन के अंदर हमारे ऊपर अपना राज्य होना चाहिए, अपने ऊपर हमारी कमजोरियां जो है उसका राज्य नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी द विक्टिम ऑफ आवर ओन वीकनेसेस। और साइकोलॉजी में एक कहावत है कि डू नॉट डिफेंड योर वीकनेसेस, इन साइकोलॉजी देयर इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट डू नॉट डिफेंड योर वीकनेसेस, इफ यू डिफेंड योर वीकनेसेस यू विल बी ऑलवेज विक्टिम ऑफ दोज weaknesses and you will be always slave of your weaknesses. So do not defend your weaknesses. That is one of the fundamental aspect of psychology. That do not defend your weaknesses. Or uske andar pehli baat aati hai, yahi jo Baba ne kahi ki swaraj adhikari, hamare senses, sense organs aadi jo bhi hai, vichardhara hai jo bhi hai, uske upar control hona hi chahiye. और कंट्रोल अगर उसके ऊपर होता है, हम स्वराज अधिकारी बन जाए, तो हमारे जीवन में क्रोध जो है, अशांति जो है, वो सब ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। और फिर एक नई बात, एब्सोल्यूटली ब्रांड न्यू गॉडली सर्विस के मेथड बताई बाबा ने, एब्सोल्यूटली ब्रांड न्यू, मैंने तो मैं 1952 से यज्ञ सेवा के अंदर बाबा के साथ कनेक्शन में हूँ. आज तक बाबा ने ये शब्द यूज नहीं किया हुआ था सेवा के फील्ड में. बाबा ने कल जो कहा बहुत सुंदर कहा, आज चारों ओर भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की बातें चल रही है. बाबा अप टिल नाउ वाज नेवर रिफरिंग टू दिस करप्शन करप्ट एटीट्यूड करप्ट एक्सचेंज ऑफ वर्ड मनी एंड ऑल दो थिंग्स. तो बाबा वाज नॉट रिफरिंग टू करप्शन. आज की दुनिया की समस्याएं जो है उसमें करप्शन जो है टेररिस्ट एक्टिविटी आदि जो भी है, बाबा वाज नॉट रिफरिंग टू दिस थिंग अप टिल नाउ. और पहली बार बाबा ने कहा कि जो बातें चल रही उस बात वातावरण को मन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर करके सबके मन में परमात्मा याद का उमंग उत्साह पैदा करो. दिस इज अ ब्रांड न्यू गॉडली सर्विस और इट कैन बी डन बाय एनीबडी एंड एवरीबडी. कारण एक बात फंडामेंटली याद रहे, भ्रष्टाचारी जो होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता है, किसी का वीआईपी नहीं. और इसलिए हम कभी भी कोई भी वीआईटी भ्रष्टाचार होता है उसके डिफेंड ना करें. उनको समझ जाए कि भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचारी ही है. एक्सेप्ट समबड़ी कि भ्रष्टाचारी है तो इसको भ्रष्टाचारी क्या भ्रष्टाचारी पना जो क्या है तो दूर करने के लिए बाबा ने सेवा का साधन बनाया है कि उसका परिवर्तन कर करके उसके मन में परमात्मा के बारे में उमंग उत्साह पैदा करो. ये नहीं हो रहा है कोई भी सेवा केंद्र. मैं तो इतना सेवा केंद्रों के साथ सेवा में भारत की सेवा के साथ तो वर्तमान में, पहले तो विदेश के साथ भी था. अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि सेवा केंद्रों के अंदर इस प्रकार से भ्रष्टाचारियों की सेवा के लिए प्रोग्राम जो बनाना चाहिए और उसके अंदर बाबा ने जैसे कल कहा कि मन में परमात्मा की याद का उमंग उत्साह पैदा करना, तो ये बहुत बड़ी सुंदर सेवा है. इसके अंदर क्या है आज क्या क्या हो गया है हमारे सेवा केंद्रों के पर यही प्रॉब्लम होता है. मेरा जिज्ञासु, मेरा वीआईपी, मेरी सेवा, मेरा हद, इस प्रकार से जो बाकी जो डिवीजन जो है वो बाकी सब डिवीजन को जो भी श्रेष्ठाचारी है उसके बीच में आता है. भ्रष्टाचारी किसी का जिज्ञासु नहीं है, किसी सेवा केंद्र की हद में भी नहीं आता है, वो बेहद में ही रहता है, किसी का स्टूडेंट भी नहीं बना हुआ होता है. और इस प्रकार कैसे सभी भ्रष्टाचार की सेवा के अंदर कोई भी प्रकार का बंधन के बिना सेवा करने का फील्ड जमा कर सकते हैं. हमारे हिंदुस्तान में तो हम जानते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार है, दुनिया में भी है. मैं जब स्टूडेंट था, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, हमने एक ऐसे लिखा था और ऐसे के कारण मुझे सेकंड प्राइज मिला था. उसके अंदर हमने लिखा था कि भ्रष्टाचार है फक्त हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के सभी देशों में. और उसके अंदर मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ था क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की दुनिया का एग्जाम्पल दिया हुआ था कि इंग्लैंड का ऑथर था, एक नॉवेल लिखने वाला, सॉमरसेट मॉम. दोज हू आर फ्रॉम इंग्लैंड दे मस्ट बी नोइंग दिस ऑथर सॉमरसेट मॉम. Somerset Maugham was writing one novel and it was being printed regularly on every Sunday edition of that particular newspaper. So he was contributing this word, that novel, by contributing each chapter of that novel in that Sunday edition of that particular newspaper. Or the title of that novel was The Stage. स्टेज नाम से उस पुस्तक का नाम रखा हुआ था, स्टेज नाम से वो कहानी सारी लिख रहा था. उसके अंदर उसका जो हीरो था, हीरो ऑफ द स्टोरी वाज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. और हीरो ऑफ द जो ही वांटेड टू एस्टैब्लिश हिज प्रैक्टिस, तो कैसे प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करें, तो ही केम इन टू कॉन्टेक्ट विथ वन स्टेज एक्ट्रेस. उस जमाने में 1932-34 में तो ड्रामा ज्यादा प्रख्यात थे, सिनेमा तो इतने हुए भी नहीं थे. चार्ली चैपलिन आदि के मूवी चलती थी, बाकी तो टॉकी तो चलती भी नहीं थी. तो इसके कारण स्टेज बहुत अच्छे चलते, स्टेज के एक्टर्स जो होते हैं, तो ये स्टेज की एक्ट्रेस थी और थोड़ी आउट ऑफ डेट, मतलब पुरानी हो गई थी, तो इनके साथ ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का संबंध हुआ। तो उसने उनको बताया कि कैसे तुम्हारी जो इनकम जो है वो इनकम कैसे छुपाने की, कैसे तुम इनकम टैक्स में से ज्यादा भरने से बच जाएंगी, वो सिखाया। तो उसको तो बहुत अच्छा लगा कि मेरा इनकम टैक्स में बचा सकते हो। तो इसने अपने फ्रेंड सर्कल में सबको कहा कि ये हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो हमारी इनकम टैक्स बचा दिया है। तो इसके कारण उनकी प्रैक्टिस बढ़ गई, इतनी प्रैक्टिस बढ़ गई कि एक जमाना ऐसा आ गया कि वही अपनी जो गर्लफ्रेंड जो थी, स्टेज एक्ट्रेस थी, उसको निग्लेक्ट करने लगा। तो फिर दोनों के बीच में झगड़ा होता है। ये सारी बातें कहानी है, परंतु फैक्ट इज इवन इन 1932 सोमरसेट मॉम रिकग्नाइज दैट दिस टाइप ऑफ डॉजिंग इनकम टैक्स, सेविंग इनकम टैक्स बाय मेकिंग फॉल्स एंट्रीज और बाय प्रोड्यूसिंग फॉल्स वाउचर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, दैट वॉज गोइंग ऑन एंड दैट हैज बीन रिकग्नाइज बाय सोमरसेट मॉम इन हिज नॉवेल, दैट टाइटल ऑफ दैट बुक इज दिस स्टेज। सो दिस इज कॉमन प्रैक्टिस। भ्रष्टाचार बहुत पुरानी दुनिया की बात है, भ्रष्टाचार हो रहा है, महाभारत में भी दिखाया गया है, सब जगह पर दिखाया गया है। भ्रष्टाचार फंडामेंटल है। रामायण जिसने पढ़ा होगा उसके अंदर बात आती है कि राम ने वाली को जो है छिप करके उसको तीर लगाया। सुग्रीव और वाली दोनों भाई थे, आपस में लड़ रहे थे, तो उसमें सुग्रीव को बचाने के लिए, सुग्रीव के डिफेंस के लिए राम ने छिप करके तीर लगाया और वाली घायल किया। तो वाली ने राम को फिर वही सवाल पूछता है कि राम आपने भ्रष्टाचार क्यों किया, आपने छिप करके मुझे क्यों तीर लगाया, आप मुझे कहते थे तो मैं अपना सिर काट करके मेरे भाई की सेवा में रखता था, आपने छिप करके ये भ्रष्टाचार क्यों किया। तो ये इसके ऊपर पंडितों के अंदर बहुत डिस्कशन होता है कि राम ने छिप करके ये जो वाली का वध किया वो भ्रष्टाचार है या नहीं। इस प्रकार से रामायण के समय से महाभारत में समय में भी ऐसा ही था। कई जगह पर ये प्रॉब्लम जो है सनातन प्रॉब्लम जो भी है शास्त्रों के अंदर, ये भ्रष्टाचार की बातें बहुत कॉमन आती है। जिन्होंने विक्रम राजा की भी कहानियां सुनी होंगी, विक्रम राजा और वैताल की 32 कठपुतलियों की कहानी, उसके अंदर भी जितने भी एग्जाम्पल्स वैताल ने दिए हुए हैं वो सभी भ्रष्टाचार के ही दिए हुए हैं। ऐसा हुआ था, फिर ऐसे हुआ, फिर इसने ऐसा भ्रष्टाचार किया, फिर कौन जिम्मेदार होता है, ऐसे ऐसे सवाल वैताल पूछता है राजा विक्रम को, और राजा विक्रम जवाब देता है और वो जो वैताल जो है जिस मुर्दे के अंदर था वो जाकर के छिप जाता है। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार के बारे में काफी बातें हो रही है। उसके बीच में ये नए प्रकार की सेवा बहुत सुंदर सेवा है, और मैं समझता हूँ हमारे जो भी यहाँ आपके पास जो भी क्लास कराने वाले आएंगे उसके अंदर, क्योंकि अभी तो समय नहीं है ज्यादा इसके ऊपर हम चर्चा करें, इसलिए आप सबको हमारी रिक्वेस्ट है जो भी यहाँ टीचर्स के रूप में क्लासेस देते हैं, अलॉट करते हैं, उनको कहिए कि ये जो इस प्रकार से श्रेष्ठाचार और भ्रष्टाचार के बीच में डिफरेंस क्या है, और श्रेष्ठाचार कैसे सब करना शुरू करें, और कैसे भ्रष्टाचारियों के मन में जो बाबा ने कहा हुआ है कि परमात्म, जो बाबा ने कहा परमात्म जात का उमंग गुस्सा पैदा करो, इस प्रकार से परमात्मा के प्रति उनके दिल में उमंग गुस्सा पैदा करेंगे तो जरूर भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। हम लोगों को स्कूल में दिखाया जाता था कि पानी एक ग्लास दिखा देते थे और हमारे टीचर ने हमको कहा कि ग्लास में से हवा निकाल दो, हवा निकाल दो, तो हम हवा निकाल नहीं सकते थे, और टीचर ने बहुत सिंपल किया, उसमें पानी डाला तो हवा निकल गई। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, उसके अंदर श्रेष्ठाचार निर्माण करने के लिए उनके अंदर पानी डालना चाहिए, अर्थात उनके अंदर परमात्म शक्ति का उमंग उत्साह भरो, तो अवश्य ही वो भ्रष्टाचार उसके जीवन से दूर हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी ईश्वरीय सेवा की न्यू डायमेंशन इन द फील्ड ऑफ गॉडली सर्विस, हाउ टू रिमूव this corruption, how to remove all those things. You know, all those social evils in the name of religion only. Somebody attacked, World Trade Centers in America also. All these are problems of the modern world because of these things only. Thinking, wrong thinking. Or what we call, as you see, wrong thinking based on certain religious beliefs also. So those beliefs which encourage such type of bhrashtachar, corruption, all those things should be stopped. And for that, Baba has been asking us yesterday that do this type of godly service, a new, brand new ways and method of doing godly service has been taught to us by Baba yesterday. And हमारे जो भी हमारे निर्धार भाई आदि जो भी है जो हिंदुस्तान में फ्यूचर ऑफ पावर के लिए बात करते रहते हैं उन सबको भी ये बताना चाहिए कि पावर भ्रष्टाचार नहीं है परंतु भ्रष्टाचारी मनुष्य जो है उसकी वृत्तियां जो भी है वो भ्रष्टाचारी हो गया है इसलिए अंग्रेजी में कहते भी है विच आई डू नॉट एग्री इंग्लिश में कहते हैं पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली बट आई डोंट एग्री विद देम Power does not corrupt anything, anybody. It is mind, we the person using power. If we are corrupt, we will be using our power in a corrupt manner. So please do not blame power, that power corrupts. Power does not corrupt. Power is power. Money is money. Money, if you have got money, you can use it for good purposes. You can use it for bad purposes also. Money does not result in good or bad. It is our own action. Through our own action, we can convert money for a good cause. Or if we are not determined to use it for a good purpose, then we may use it for some inferior type of work or something because of which we can generate so many things, new bad things also. So it depends on us. Of how we act and how we convert our own resources. So I always tell those who are in charge of future of power that they must convince people that power is not corrupt and power does not corrupt anybody. But our own attitude and our own desires and all those things, because of that we have converted power into corrupt power. जैसे बाबा ने ज्ञान में सिखाया हुआ है धन के अंदर धन माया नहीं है परंतु जब धन के अंदर उसमें आसक्ति आ जाती है उस करप्ट दृष्टिकोण से पैसा कमाया होगा तो उसका रिजल्ट भी ऐसा ही होता है तो इस प्रकार से कल बाबा ने ये करप्ट पावर के बारे में करप्शन के बारे में ईश्वरीय सेवा करने का एक नया साधन नया उमंग उत्साह का कारोबार सिखाया हुआ है मैं समझता हूँ हमारे सभी बहन भाई चाहे यहाँ सामने बैठे हैं चाहे विदेश देश में है भारत में भी है सब जगह पर क्योंकि सब जगह पर सबको अनुभव है कि करप्शन क्या है कैसे होता है तो इसलिए भ्रष्टाचार को बाबा ने कहा है उसको दूर करने की बात है फिर ये बाबा ने तब कहा उसके बाद ये 8-15 तक बाबा की यह मुरली चली फिर बाबा ने अब क्या करना है 8-15 मतलब बाबा ने कल जो मैं बताया आपको 7-15 को गुलजार दादी स्टेज पर बैठे 7-22 को ध्यान में गए और फौरन 7-26 को बाबा की पधरामणी होगी कल का बाबा का दिव्य अवतरण जो था वन ऑफ द फास्टेस्ट था विद इन 4 months बाबा केम डाउन इनटू द बॉडी ऑफ सिस्टर गुलजार दादी एंड Baba gave us drashti for 10 minutes and then Baba started murli at 7:36. Aur ab tak jo hai, up to bhrashtachar aur uske baad jo hai, was up to 8:15. Aur uske baad Baba ne partiyon ke saath, desh ke saath, jaise ki UP ke saath baat kiya, phir Australia ke saath baat kiya, Australasia ke फिर अमेरिका एंड कैरेबियन के साथ बात किया अफ्रीका और मॉरिशियस के बात किया फिर रशिया के साथ बात किया फिर टीचर्स के साथ बात किया उस प्रकार से 8:15 से 8:37 तक बात किया हुआ है उसके अंदर एक बात बहुत अच्छी अमेरिकन और कैरेबियन के लिए बाबा ने कही है कि कैसे बैलेंस रखने की एक नई युक्ति बताई ये मेरे को ये बाप अव्यक्त बाप दादा ने पहले भी सिखाया था. मैंने अव्यक्त बाप दादा के सामने एक हमारा बॉम्बे का एक अनन्य युगल था उसको बिठाया था और बाबा ने उसको डायरेक्शन कुछ दिया. उसके बाद मैंने बाबा से पूछा कि बाबा आप ये बताएंगे कि इन दोनों में आगे कौन है. तो बाबा ने कहा जरूर मैं बताऊंगा. तो मैंने देखा कि दोनों डर गए कि इसको आगे रखेंगे या मुझे आगे रखेंगे. हस्बैंड ने समझा कि वाइफ को आगे रखेंगे, वाइफ ने समझा हस्बैंड को आगे रखेंगे. तो दोनों के मन में थोड़ी द्विधा होती. दे वेर ऑल कन्फ्यूज कि व्हाट विल बी द रिजल्ट अनाउंस बाय बाबा, हु इज अहेड इन गॉडली सर्विस. तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया. ये अगर हम सीख ले कि मीठा कैसे बनने का, मीठा कैसे बोलने का और मीठा बन करके सबके साथ अच्छा व्यवहार कैसे करने का, ये अगर हम सीख ले तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी. बाबा ने क्या कहा, मैं कहता हूँ मैं बता दूंगा दोनों में कौन आगे. मैंने कहा बाबा बताइए, बहुत अच्छी बात हो सकती है. तो बाबा ने कहा दोनों ही एक दूसरे से आगे हैं, दोनों ही एक दूसरे से आगे हैं. ऐसा किया तो दोनों खुश हो गए. तो ये मीठा शब्दों के द्वारा वास्तविकता का परिचय कराने का जो बाबा का लक्ष्य था और उसने बाबा ने कराया और बहुत अच्छी बात रही. तो ये बात सीखने की है कि हम कैसे, जो बाबा ने मुरली में तीन चार बार कहा सबका उमंग उत्साह बढ़ाना, तो उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए मीठी बात बोलना चाहिए. वह मीठे बातों में हम असत्य बात नहीं रखे और सत्यता के आधार पर भी मीठी बात बोल सकते हैं. संस्कृत में एक शब्द है, मैं वो शब्दों का पसंद नहीं करता हूँ, कटु सत्य. सत्य कड़वा होता है, इस प्रकार का ही हकीकत नहीं है. सत्य अगर हम चाहें, हम लक्ष्य रखें तो सत्य भी मीठा हो सकता है. अर्थात मीठे शब्दों में हम सत्य कह सकते हैं, ये वास्तविकता है. और इसलिए कटु सत्य कर करके सत्य को बदनाम नहीं करे तो अच्छा है. वी आर ब्लेमिंग अननेसेसरी ट्रूथ. The truth is not always sweet, but we can use sweet language in order to express truth also. Truth cannot be and not necessarily be a negative thing or containing problems and all those things. It can be sweet. That means with sweet words we can explain things in a positive manner. तो इसलिए मीठा बनने की बाबा ने जो कल बात कही, तो इसलिए बाबा ने example के द्वारा कहा ऑस्ट्रेलिया से के बारे में कि दोनों सभी एक दूसरे से आगे हैं. इसके कारण क्या हो गया, सबको संतुष्टता आ गई. हर एक की महिमा एक दूसरे आगे है ऐसा करके बता दिया. और इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी भी बात कही. दूसरी एक बात बाबा ने कल सिखाई, ये बात भी हमारे सेवा केंद्रों पर नहीं होती है. नए लोग आते हैं उनकी हम सेवा करते हैं, ये हकीकत है. चाहे देश चाहे विदेश, दोज हु आर न्यू कमर्स देन वी अटेंड टू देम प्रॉपरली. परंतु कहीं ऐसे भी है, जो बाबा ने कल जो कहा बहुत अच्छी बात कही, कमजोर आत्माएं ज्ञान में चलते चलते कहीं कमजोर बन जाते हैं. और कमजोर बनने के बाद क्या होता है, हम बाबा का हाथ छोड़ देते हैं. दे स्टॉप कमिंग टू द सेंटर और दुनिया में चले जाते हैं. कोई मैरिज कर देता है, कोई क्या करता है, कोई कहाँ कहाँ चले जाता है. इस प्रकार से होता है, बाबा का हाथ छोड़ देता है. इन सब को बाबा ने समराइज करके एक शब्द में की कह दिया, कमजोर आत्मा. तो जो ऐसे सेंटर पर आने वाले जो है, आप हिसाब निकालिए, हमारे हिन्दुस्तान में तो सब सेंटरों पर प्रेजेंट मार्क होती है, उनसे मालूम पड़ता है कौन रेगुलर है, कौन रेगुलरली इरेगुलर है और कहीं इरेगुलरली रेगुलर है और कहीं एब्सोल्यूटली इरेगुलर बन जाते हैं. इस प्रकार से जो होते हैं, जो एब्सोल्यूटली इरेगुलर बन जाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन वीकनेसेस एंड ऑल दोस थिंग्स. तो इसलिए बाबा ने कल कहा, बहुत अच्छी बात कही है. और ये भी हमारे सेवा केंद्रों पर ये सेवा भी होनी चाहिए कि जो बाबा के हाथ थोड़ा भी ढीला कर देते हैं, मतलब थोड़े थोड़े समय में बाबा के पास आने का काम छोड़ देते हैं और फिर हाथ हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनके लिए बाबा ने कहा उनको अपने सहयोग के द्वारा, यू ट्राई थ्रू योर सेल्फ ओनली, आप अपने मेहनत के द्वारा उनको फिर से बाबा के ज्ञान के प्रति, बाबा के प्रति, उनके जीवन में योग धारणा आदि के प्रति उनको तैयार कीजिए। नहीं तो बड़ों के सहयोग से भी ये नहीं होता है। 90% ऑफ दिस सिस्टर्स जो है खुद मेहनत करती है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए, जो नहीं आता है उसके पीछे मेहनत करने का, वो सब 90% बहने खुद मेहनत करती है। परंतु अगर खुद की मेहनत के द्वारा सफलता नहीं मिलती है और उस भाई जो कमजोर आत्मा बन गई है वो बाबा का हाथ छोड़ने की तैयारी में हो जाता है, ऐसे समय पर क्या करना चाहिए उसके बारे में बड़ों का सहयोग लेना, बड़ों को इस प्रकार से उनका अनुभव जो है उसको जीवन में काम करने में लायक बनाना और उसके आधार पर सेवा करने का। तो ये बड़ों का सहयोग की जो बात जो है वो कल बाबा ने कही है। तो ये भी जैसे पहले भ्रष्टाचार की नवी सेवा बताई बाबा ने, इस प्रकार से ये भी सस्टेनेंस ऑफ द फैमिली, फैमिली को डिवाइन फैमिली के मेंबर जो भी उसको सस्टेन करने के लिए जो करना चाहिए ये करने के लिए कमजोर आत्माएं जो भी है, हाँ, जिसके जीवन में कोई न कोई समस्या आ गई है, कोई न कोई विकार आ गया है, ऐसी जो भी विकृत अवस्था वाला जो भी होगा उसको, उसकी कमजोरी को जीतने के लिए इसको सिखाइए, खुद मेहनत करिए। टीचर की या तो हम बड़ों की सहायता से भी करना चाहिए। और फिर परोपकार की बात कही, सबके ऊपर उपकार करने की बात बाबा ने कही। फिर रशिया के साथ, बाद में टीचर्स के साथ बाबा ने किया कि जिनके फीचर्स से बाप दादा दिखाई पड़े, ये बाबा ने जो कहा जिनके फीचर्स से बाप दादा दिखाई पड़े, फक्त टीचर्स के लिए नहीं, हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ जितना भी ये क्लास सुनते हैं, हम सबका, सबके लिए बाबा ने कहा कि आपके फीचर्स से बाप दादा दिखाई दे और नैनों से भी हर एक बोले कि मेरा बाबा, प्यारा बाबा, उसका अनुभव हो। टीचर्स को नहीं देखे लेकिन टीचर्स में बाप दादा दिखाई दे, ये नई प्रकार की सेवा कल बाबा ने बताया कि टीचर्स में के फीचर्स में बाबा, बाप दादा दिखाई दे, या तो टीचर्स को नहीं देखे नीचे लेकिन टीचर्स में बाप दादा दिखाई दे, ये नए प्रकार की ईश्वरीय सेवा है। टीचर्स के सामने लक्ष्य ये होना चाहिए, मैं ऐसा टीचर्स के रूप में, और हम सब टीचर्स है यहाँ जितने भी बैठे हो, मैं समझता हूँ 7 दिन का कोर्स तो कराते ही होंगे, यू मस्ट बी गिविंग 7 डेज कोर्स, ऑल ऑफ यू मस्ट बी डूइंग, यू मस्ट बी एक्सपर्ट इन गिविंग 7 डेज कोर्स, सो इट मस्ट बी पॉसिबल फॉर यू टू सी दैट यू सी थ्रू योर फीचर्स बाप दादा इज रिवील्ड। और फिर आगे बढ़ो, बाप समान बनाते चलो। और फिर बाबा ने बहुत सुंदर एप्रिसिएशन किया, आज तक बाबा ने टीचर्स के बारे में जो बात किया उसमें ये जो एप्रिसिएशन के वर्ड्स जो है ना, आज तक बाबा ने यूज नहीं किए थे, कल तक मतलब बाबा ने यूज नहीं किया था। कल बाबा ने कहा बहुत सुंदर, टीचर्स को एप्रिसिएशन के रूप में कहा, कहा कि आप मेहनत का फल देख रहे हो। कल जितना भी क्लास था, चाहे देश का था, विदेश का था, चाहे जो भी सारी दुनिया के अंदर जो भी दुनिया बाबा को देख रहे थे, यहाँ सुन रहे थे, इन सब, हम सब का कारण क्या है, हम सब पहले पहले बाबा का परिचय में कैसे आए, वी मस्ट हैव कम अक्रॉस थ्रू वन टीचर। सेंटर पर जाते हैं, सेंटर पर गए होंगे, सेंटर पर बहनों ने मिले होंगे, बहनों ने 7 दिन का कोर्स कराया होगा और उसके द्वारा हम बाबा के बच्चे बने, ऐसा ही है। और आप में से कई टीचर्स खुद ही यहाँ बैठी हुई है, तो आपके द्वारा कई सेंटरों का, कई सेवा केंद्रों का, कई बहन भाइयों का इस ज्ञान में जन्म हुआ होगा। तो बाबा ने कल कहा कि ये जो आप इतनी सारी सभा जो है उसको बाबा ने अप्रिशिएट, कितना सुंदर अप्रिशिएट किया कि आप अपनी मेहनत का फल देख रहे हो, कि आप लोगों ने मेहनत किया, जा जा करके कहाँ कहाँ जा करके सेवा किया हुआ है, कहाँ कहाँ, रशिया में कोई गया, कोई अमेरिका गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई अफ्रीका गया, कहाँ कहाँ गया हुआ, देश विदेश में, भारत में भी आपको मालूम होगा, जब यहाँ से आबू से निकली बहने तो पहले अहमदाबाद गई उस साइड में, वहां दिल्ली में गए, अहमदाबाद से आबू बॉम्बे में आए, कोई बेंगलोर गए, इस प्रकार से सेवा की वृद्धि हुई। और सेवा की वृद्धि करने वाली टीचर्स बहने ही थी, हमारी दादियां एक जमाने में तो टीचर्स ही थी, आज दादियां बड़ी हो गई है तो हम इनको दादी कहते हैं। पहले तो टीचर्स ही थी, हम बहने ही कहते थे उनको। तो इस प्रकार से टीचर्स के द्वारा उनके फ्यूचर्स में क्या होना चाहिए, वो बाबा ने कल बहुत सुंदर बात कही है। और फिर बाबा ने कहा कि हमारे डायरेक्ट विदेशियों के द्वारा एक बात सिद्ध हो गई, बाबा विश्व पिता है, फादर ऑफ द ह्यूमैनिटी है। इस प्रकार की बात बाबा ने बताई। फिर बाबा दादियों से सबसे बैठ रहे थे। अब उसके पहले क्या हो गया, इतना सब मिल करके बाबा चले गए। हम बाबा चले गए, कईयों को ख्याल में यही आया कि बाबा ने विदाई ले लिया है, पर तुम्हारी शशि बहन ने बहुत याद कराया कि सब बैठ जाओ, बाबा का मैजिक सुनिए, मैजिक देखिए। उसके अंदर हमने देखा हुआ है कि 8:37 को बाबा चले गए, 8:37 को। और उसके बाद सबने आह्वान देना शुरू किया कि शशि बहन ने भी सबको बिठाया और सबको कहा कि आप सब योग में बैठ करके बाबा का आह्वान कीजिए। और फिर और गीत बजना शुरू किया, 8:45 को गीत बजना शुरू हो गया, 8:47 को दादी गुलजार फिर से वतन में गई और 8:49 को फिर से बाबा की पधरामणी हुई। इस प्रकार से ब्रेक चालू मुरली के बीच में हो और ब्रेक के बाद फिर क्या हुआ, इस प्रकार का कारोबार जो है वो कल पहली बार हम सबने देखा। उसके कारण बहुत ही हो सकते हैं, कई कारण हो सकते, कईयों ने कुछ कहा, कईयों के कुछ, हमारे पास 8-10 लोगों ने कहा कि इस बात के कारण ऐसा बाबा चले गए होंगे इस कारण के। इस प्रकार से बहुत से कारण हो सकते हैं। ब्रह्मा बाबा के लाइफ से भी बाबा अव्यक्त हो गए साकार बाबा, उसके बाद बाबा और ब्रह्मा बाबा और अव्यक्त बाबा दोनों सेवा सृष्टि का चक्कर लगाने के लिए निकले थे। तो बाबा को एक जगह पर ब्रह्मा बाबा को बाबा ने अव्यक्त बाबा ने बिठा खड़ा कर दिया कि हम खड़ा रहो, मैं अभी आता हूँ। इस प्रकार से बाबा ने उस टूर के अंदर भी ब्रेक लिया और फिर थोड़े समय के बाद आए और बाबा ने बताया कि एक बच्चे को मेरे को साक्षात्कार कराना था इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो मुझे वो बात याद आ गई। तो मेरे को किसी ने पूछा क्या हो गया होगा, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताता हूँ कि किसी भक्त को साक्षात्कार कराने आदि के लिए बाबा को जाना पड़ा हुआ होगा। इसलिए 8:37 से 8:47 में तो 10 मिनट बाबा गए, 8:47 को आए और फिर 8:49 को मतलब बाबा ने मुरली चालू किया। तो इस प्रकार से ये बाबा ने जो मुरली चालू किया, सबसे मिलना जुलना किया और दीपावली की बात की और बहुत अच्छी जो दादियों से भी बात किया और बाबा ने भी हंसते हंसते कहा, जो बाबा ने विदाई लिया फिर आया और बाबा ने उस कार्य को क्या बहुत सुंदर हिंदी में जवाब दिया हुआ है, आंख मिचोली हो गई। जो हिंदी जानते होंगे वो ही समझ सकेंगे, मुझे मालूम नहीं हमारी बहन कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगी। आंख मिचोली का खेल हो गया, इस प्रकार से आना जाना एक सेकंड में हो गया, 8 मिनट में या 10 मिनट में बाबा का आना जाना हुआ, ऐसा आंख मिचोली का खेल कल पहली बार हुआ। और फिर दिवाली की भी बात हुई और सबके साथ भी बात किया, हमने भी बाबा को दिवाली का कार्ड दिया, डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिंट हो गया उसको भी दिया और भी कहीं बाबा को बात पूछनी थी वो जवाब दिया, पूछा मतलब बाबा ने जवाब दिया। और इस प्रकार से बाबा ने दिवाली के बारे में जो संदेश दिया और उसमें भी कल बाबा ने पहली बार दूसरा एक शब्द यूज किया, बाबा ने कहा दुनिया में तो दुनिया सभी दीपक जला देते हैं, उसमें बाबा ने एक नया शब्द यूज किया रूसा हुआ, मतलब जो रूठा हुआ है ना वो भी दीपक तो जला देता है। आज की दुनिया में तो सभी दीपक जला दे, चाहे उमंग उत्साह में होता है चाहे रूठे हुए होते क्या कमजोर हो गया होगा, परंतु दीपक जलाने का कारोबार तो सभी करते हैं। और हम लोगों ने बाबा को निमंत्रण दिया कि बाबा आपको सतयुग में हमारे साथ दिवाली मनाने के लिए आने का है। तो बाबा ने क्या कहा, देखेंगे, ऊपर से बैठ करके शायद बाबा देखेंगे परंतु करेंगे नहीं, मतलब आकर के मनाएंगे नहीं, देखेंगे दूर से देखेंगे। कितना सतयुग के बारे में बाबा का कंसेप्ट कितना क्लियर है, देखेंगे करेंगे नहीं, देखेंगे भी वो दूर से देखेंगे। क्यों क्यों? बाबा ने एक शब्द में बता दिया है कि वहां बच्चों का पार्ट है। सतयुग की दुनिया के अंदर कारोबार करने का, दिवाली मनाने का, वो सारा कारोबार बच्चों का। वी द चिल्ड्रन विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिब्रेटिंग दिवाली इन द गोल्डन एज, एंड दैट इज अवर पार्ट, अवर रोल। प्रॉब्लम इज दैट विल वी बी देयर अनलेस एंड अंटिल वी ट्राई टू प्यूरिफाई अवर सेल्स एंड ट्रांसफॉर्म अवर सेल्स फुल्ली, वी विल नॉट बी एबल टू कम डाउन इन टू द वर्ल्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन एज। We may be coming any time in the third or fourth lifetime of Lakshmi Narayan, or maybe even from the beginning of Silver Age also. We don't know what is our role, but we should try that we should be in the world from the beginning of the Golden Age. Then what will happen? That but Baba ne jo kaha bachchon ka part hai, to isliye ये बात अपने आप से पूछिए कि क्या हमने अपना पार्ट इतना अच्छा बनाया है कि हम सतयुग की आदि से आएंगे। विल वी बी एबल टू कम इन टू दिस वर्ल्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन एज, एंड पर्टिकुलरली दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट अनलेस एंड अंटिल वी ट्राई टू मोल्ड अवर सेल्फ फुल्ली, वी मे नॉट बी एबल टू कम डाउन इन टू द बॉडी इन दिस वर्ल्ड from the beginning of the golden age. And then what will happen? As Baba has told to one sister also, that if we don't come right from the beginning of the golden age, then what will happen? You have not seen Brahma, Baba and Mateshwari in this birth also. You will not be able to see Brahma, Baba as Narayan and Mateshwari as Lakshmi. That means the first birth in the new cycle. Then what will happen? Baba has said that at least then in the, always you will be seeing Baba and Mateshwari only through pictures, through statues and idols and all those things only. You will not be able to experience them personally. And therefore, in order to develop this personal development and personal relationship and to be friend do this rasa and all those things, you see, enjoy this godly, golden aged world, you see, fully, we must try to see that we come down on this earth along with Brahma, Baba and Mateshwari. Otherwise what will happen? That most of you were not here till Brahma, Baba was in physical body. Most of you have taken birth after Brahma, Baba became avyakta also. So for you, it is, and for everybody, this is a challenge. Those who are in the knowledge right from beginning or any other time, it is not a guarantee that they will be coming right from the beginning of the golden age. It all depends on our own action, our own efforts and all those things, our own transformation. So please see that we have our own transformation in such a manner that we come down on this earth right from the beginning of, that means 001, 000, the new world with the new calendar, 0000. In that case, if you understand this world and understand the world drama, then you will realize that thing. So this is this will be the sum total of our experience and experiment, that we should transform ourselves in such a manner that we will be able to celebrate Diwali with Lakshmi Narayan the first, not Lakshmi Narayan number 3, 4, 5, 6, 7, not like that, but right from the beginning, from the day of Lakshmi Narayan number 1, from that day, if we come down into the world and be the members of the royal family, then only we will be able to play or celebrate Diwali with Lakshmi Narayan. So that should be our target, that should be our aim and object. And I hope and I convey my best wishes to all of you that you should be able to fulfill this desire and all of you come down into this world right from the very beginning of the new world cycle, 0000, or at least right from the coronation of Lakshmi Narayan, so that you can celebrate Diwali with Baba in the golden age. Because Baba has categorically said yesterday that to celebrate Diwali in the golden age is the role of you children only. So let us accept this challenge and prepare our role in such a manner that we may become worthy enough to be in the golden age right from the beginning and able to celebrate Diwali with Shiv Baba. So these are my wishes. This is the result of yesterday's Murli. I hope I have been able to convey to you and I tried my level best to maintain balance between English and Hindi. The rest is open to you. You can just think it over. But those new varieties of godly service that Baba has taught yesterday, let us experiment with that thing. And then let us have success in it also. Om Shanti.